देवियों सज्जनों, अभी अंग्रेजी मास के हिसाब से फरवरी 12 तारीख को स्वामी दयानंद जी का जन्म दिवस था। भारतीय तिथि के हिसाब से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष दशमी तिथि में होता है, जो मार्च 3 तक को आता है, पर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से फरवरी 12 को है। आज उस महापुरुष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस अवसर पर। बहुत कम अवसर मिलता है हम के महापुरुषों के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी जी, उनका पहले नाम मूल शंकर था। एक ब्राह्मण परिवार में गुजरात में राजकोट डिस्ट्रिक्ट आजकल है काठियावाड़, जहां महात्मा गांधी जी भी जिस काठियावाड़ रीजन में पैदा हुए थे, उसमें मोरवी एक छोटा सा उन दिनों राज्य हुआ करता था। उस राज्य के पास टंकारा गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी कृष्णलाल जी तिवारी राजा के दरबार में टैक्स कलेक्टर का काम करते थे। बड़े अच्छे समृद्ध परिवार के, ट्रेडिशनल ब्राह्मण परिवार के, जहां वेद पाठ वगैरह के वे सिखा करते थे। हम उनके जीवन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी कम पता है। तो पहले उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद बेसिकली जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, आर्य समाज कोई सेक्ट या कोई धर्म प्रचार की संस्था, एक खास सेक्टेरियन व्यू को प्रमोट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, अपने गुरु की फिलॉसफी को प्रचार करने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ना अभी भी है। जैसे स्मृति जी ने आपको कहा कि फोटो लगाए नमस्कार कर लीजिए, ये नहीं है। हम किसी भी मरे हुए व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते हैं, इवन हमारा स्वामी गुरु स्वामी दयानंद जी भी हो, अब कभी नहीं देखेंगे। जिंदा आदमी को आप हजार बार प्रणाम करिए या परमात्मा को करिए, जो मर चुके हैं, जो जड़ है, यही तो स्वामी जी ने सिखाया कि हर कहीं सर फोड़ फोड़ करके बुद्धि को फोड़ दिया, बुद्धि को खराब कर दिया। जीवन में कभी भी कॉमन सेंस को यूज करना नहीं सीखा, और जिसके कारण समाज में, भारत जैसे देश में इतने तरह की समस्याएं आई। ऐसा नहीं है कि जब सोमनाथ मंदिर में दर्जनों बार आक्रमण होता था अफगानियों के द्वारा, उसको तोड़ करके ले जाते थे, ब्राह्मणों को मारते थे, पंडों को मारते थे, तो वहां कोई लोक नहीं थे, हजारों में थे, पंडे थे, बहुत मोटे मोटे हट्टे तगड़े थे, और भी लोग थे, कोई एक भी क्यों नहीं प्रोटेक्ट करता था? क्योंकि हम रूढ़ी के कारण कॉमन सेंस को यूज करना बंद कर देते थे। क्योंकि हमारे यहां जो जातिवाद का एक खूंखार बीमारी थी, आज भी है, जिसमें ये है कि लड़ाई तो सिर्फ क्षत्रिय को करना है, हम ब्राह्मण है, हम सिर्फ पढ़ना लिखना पूजा पाठ यही काम करेंगे। वैश्य सोचता है मुझे तो दुकानदारी करना है। दुनिया के बाकी कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, जिसके पास ताकत है वो लड़ता है, वो क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो कुछ हो। ऐसा नहीं है कि जब हमारे यहां आक्रमण हुए तो हमारे पास ताकत नहीं था, पर बुद्धि में ताला लगी हुई थी, थोड़ा सा भी अपोज करना हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे जात के खिलाफ था। स्वामी जी ने जब अपने रिफॉर्मेशन मूवमेंट भारत में शुरू किया, जब उन्होंने देखा उनके जन्म होने से लेकर के आगे तक कि पूरे देश में धर्म के नाम पर जिस तरह के मीथ चलता है और आज भी चलता है, हर मीथ को हिस्ट्री साबित करने के लिए, साइंस साबित करने के लिए, आजकल तो और भयानक बीमारी है हमारे हिंदू लीडरों में। मैं आम हिंदुओं की बात नहीं करता हूं, वे कि हर वो मिथ को साइंस हिस्ट्री साबित करने के लिए उठपटांग क्या क्या लॉजिक ला करके खुद की मजाक उड़ाते हैं और अपने कम्युनिटी की भी मजाक उड़ाते रहते हैं। वैदिक संस्कृति के नाम पर मिथ को प्रचार करना, धर्म के नाम पर सारे पाप अन्याय अत्याचार को जस्टिफाई करना, जैसे जाति के नाम पर शूद्रों को स्त्रियों को हजारों लाखों साल तक पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने से रोका जाता था, वैदिक संस्कृति के नाम पर यज्ञों में पूजा पाठ में पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, जब मैं कहता हूं दी जाती थी इसका अर्थ नहीं कि आज नहीं दिया जाता है, आज कम हो गया है, वो तो भारत से अमेरिका आकर के भी लोग यही सब काम करते हैं, जाति ढूंढते हैं, मंदिरों में पूजा के लिए यहां भी मछली और चिकन की बलि तो नहीं दे पाते अमेरिकन कानून के हिसाब से, पर मंदिर में प्रसाद चढ़ा देते हैं, यहां भी चढ़ा देते हैं बहुत सारे मंदिरों में, वो बीमारी गई नहीं है, काम जरूर थोड़ी बहुत हुई है। धर्म के नाम पर ही मुझे अभी दो हफ्ते पहले एक परिवार ने पूछा कि मेरा बेटा हमारा बेटा हमने बड़े संस्कार से पाला बढ़ाया, संस्कृति से पाला बढ़ाया, अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बहुत होनहार है, माँ बाप को मानता है, धर्म को मानता है वगैरह वगैरह, तो उसके दोस्त उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, बोलते नहीं है, ले क्यों फिर शादी कैसे करेगा, कि नहीं हमारे धर्म में मना है कि वो खुद चुनना, वो माँ बाप चुनते फिर माँ बाप चुनने के बाद वो क्या कहते हैं उसको जन्म पत्री कुंडली मिलाते हैं तब जाकर हम करते हैं। तो वो माँ बाप मेरे से पूछ रहे तो उसको लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप बताइए क्या उसको समझाएं। मैंने कहा ये कौन सा धर्म में लिखा हुआ है, आपकी कौन से किताब में लिखा हुआ था कि माँ बाप चुनते हैं लड़कों के लिए, हिंदू के कौन से शास्त्र आप पढ़ के बच्चे को सिखाए हो, कौन से धर्मशास्त्र में आपके लिखा हुआ था कि कुंडली मिलाने से शादी होती है, आप अपने बेटे को जैसा पालना है पालो, धर्म को क्यों बीच में ला तो बदनाम करते हो, पर वो क्या करे, उनके माँ बाप ने यही सिखाया, उनके पंडित ने यही सिखाया, यही तो स्वामी जी के न कहते कि धर्म के नाम पर जितनी गंदी चीजें सब किया और शास्त्रों के नाम पर आज भी करते हैं और सब धर्म के नाम पर। मैंने कहा अगर आप इतने धर्म कर्म को मानते हो, शास्त्रों को, राम कृष्ण को भी मानते हो, कोई सा मुझे थोड़ा कोई इंसिडेंट बता दो, राम सीता की शादी हुई कौन से जन्म पत्र मिला के की थी, राम को तो आप ही भगवान मानते हो, हम तो वैसे ही नहीं मानते ईश्वर उनको, पर जो मानते हो कम से कम उनके जीवन में तो सीख लो, जन्म पत्र मिलाया था, कौन से माँ बाप को पूछ के माँ बाप ने अरेंज मैरिज कराया था, कृष्ण ने तो खुद अपनी बहन को बोला कि भाग जाओ, बड़ा भाई नहीं मानता है बलराम, तुम्हें कृष्ण से अर्जुन से प्यार है तो अगर बड़ा भाई नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा, भाग जाओ अर्जुन के साथ, कृष्ण को तो तुम ही ईश्वर मानते हो, और उसी धर्म के नाम पर क्यों बदनाम करते फिरते रहते हो, वो तुम्हारा कस्टम है, ट्रेडिशन है, सोसाइटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा है कि बुरा है, पर ये तुम्हारा धर्मशास्त्र इसमें इंटरफेयर नहीं करता, पर हम धर्म के नाम पर सब बुराइयों को जोड़ देते हैं, अपने बच्चे को हर वो उठपटांग चीजें सिखाते हैं कल्चर के नाम पर, इंडियन कल्चर के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, जब वो बच्चा खुद ह्यूमिलिएटेड होता है या खुद सवाल पूछता है तो फिर मुंह ताक के बैठे रहते क्या करे, ये आज भी हम करते हैं, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की शादी कराना, एक से अधिक पत्नियां रखना, ऐसा नहीं कि हिंदुओं में होता था, हर धर्म में होता है, धर्म का आड़ लेकर के सारे पापों को करना इस विश्व में इंसानी की फितरत है, आज भी बहुत सारे रिलीजन है जो अब हिंदुओं में तो थोड़े सुधारवादी उनके डीएनए में है, थोड़ा जल्दी बदल जाते हैं, शास्त्रों को वैसे ही कब मानते हैं, शास्त्रों के नाम पर उटपटांग चीजें तो बहुत मानते हैं, शास्त्रों को वैसे ही कब मानते हैं, इसलिए उनमें बदलने की चांस ज्यादा है, पर बाकी रिलीजियनों में तो और खतरनाक है, कि पुरुष को 50 शादी करने का हक है, बस स्त्रियों को नहीं है, बस मेरे अलावा तू इधर उधर मुंह भी नहीं कर सकता, पर्दा इसलिए डालो सिर्फ जो मुझे ही जब मैं बोलूं तब उठाना, बाकियों को दिखाना भी नहीं, और मैं तो आंख फाड़ के ऐसे लेंस वाला चश्मा पहन के सैकड़ों लड़कियों को देख सकता हूं, क्योंकि मैं पुरुष हूं, मैं शादी कर सकता हूं, ये भी शास्त्रों के नाम पर चलाया हमने पॉलीगैमी, क्लास सिस्टम को कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट किया धर्म के नाम पर, और मूर्ख अनपढ़ एक खास जाति में पैदा हुए लोगों को, ब्राह्मण का अर्थ था ज्ञानी जो पढ़ता लिखता है, पढ़ाई लिखाई में जिसकी टेंडेंसी, जिसकी इनहेरेंट नेचर पढ़ने लिखने में है, पढ़ने लिखने पढ़ाने में अच्छा काम करने में, वो ब्राह्मण है। वो अनपढ़ गंवार चाय बेचने वाला है, ऑफिस में नौकरी करने वाला, आर्मी में काम करने वाला, सब ब्राह्मण बन गए, और शास्त्रों के बारे में बिल्कुल अज्ञानता। आज भी पढ़े लिखे लोगों के अंदर कोई सेंस नहीं है कि तुम्हारे धर्म के कौन से स्क्रिप्चर है, पता नहीं, ये तो मैं साल भर बोलता रहता हूं, और शास्त्रों के नाम पर ही धर्म के नाम पर अपने अपने समाज में करीब करीब 85% लोगों को अनपढ़ बनाए रखना, भाई 50% तो आपकी महिलाएं होंगे, आधी 50 से थोड़ा कम मानिए 49-50%, क्योंकि उसको भी तो पेट से ही मारने शुरू करती है, और जो बच्चे पुरुष उनमें से भी शूद्रों को सबसे बड़ी सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन हमेशा पिरामिड की तरह होता है, जो जितने बड़े जात के बड़े लोग होते हैं, पढ़े लिखे पैसे वाले पावरफुल वाले जो लोग होते हैं हमेशा छोटे होते हैं, आम आदमी ज्यादा होती है, शूद्र करीब करीब आपके 50% में से 25-30% आपने चुन लिया, 80% लोगों को तो आपने कानून बना के शास्त्रों का नाम दे दे करके उनको पढ़ाई से जबरदस्ती रोका, मूर्ख बनाया, और जो थोड़े बहुत बचे रहे, और क्योंकि पढ़ाई सिर्फ थोड़े लोगों के बीच में बचा रहा, प्राचीन काल में तो हजारों सालों तक भारत में शिक्षा का एक अंधकार चला, आप लोगों को पता है कि नहीं है, भारत वो एक देश है जहां दुनिया को जिसने मैथमेटिक्स के सारे सारे जितने भी उसकी डायमेंशन हो सकता है, वो अरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, अकाउंटिंग हो, दुनिया के मैथ से रिलेटेड जितने तरह के डायमेंशन है सब भारत ने दुनिया को दिया है। मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, शिल्प आपके सर्जरी से मेडिसिन तक, आज भी ऐसे अद्भुत किस्म के प्लास्टिक सर्जरी के आयुर्वेद में उल्लेख हैं जो वेस्टर्न साइंटिस्ट आश्चर्य होते हैं। दुनिया को जो जब पूरी दुनिया में पढ़ाई लिखाई का कंसेप्ट भी नहीं था, तब हमारे तक्षशिला विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे जहां 10,000-20,000 लोग पढ़ते थे, पर ये सब उस समय की बात है, आज से 1,500-2,000 साल पहले की बात है। जैसे जैसे हमने शास्त्रों के साथ छेड़खानी शुरू की, एक खास कम्युनिटी का मोनोपोली चलने लगा, हम दुनिया समाज में सोसाइटी में धर्म और समाज के नाम पर सारे अत्याचार अनाचार जो कुछ चलाने लगे, 1,000-1,500 साल से भारत अनपढ़ के अशिक्षा के अंधकार में रहा। अभी जब देश आजाद हुआ 1947 में भी मुश्किल से 15-20% लिटरेट लोग होंगे, वो 15-20% भी थोड़ा ज्यादा है। आज भी भारत में 55-60 के बीच में परसेंटेज लोग लिटरेट माने जाते हैं। लिटरेट का अर्थ पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बस वो अल्फाबेट्स आता है, आ ई आता है। हाई स्कूल तक जाने वाले लोग मुश्किल से भारत में 40% भी आज भी नहीं होंगे, और 35% मतलब ये अमेरिका का डेढ़ गुना ज्यादा पॉपुलेशन आज भी भारत में इलिटरेट है। इसीलिए नहीं है कि उनको मजबूरी है, इसीलिए कि हजारों सालों से उनको धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर रोका गया, और वो हजारों सालों से जो रुकी हुई लिंक है उसको रिवाइव करने में टाइम लगता है। और जब एक सोसाइटी ओवरऑल पढ़ा लिखा कम होता है, थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, नेचुरली जो बहुत सारी बुराइयां निकलती है उसमें एक बुराई होती है सुपरस्टिशन। पेड़ से लेकर गधे से लेकर पानी तक हर यहां सर फेंकते रहो, सर पटकते रहो कि ये मेरा भला कर देगा, मेरे पति को ठीक कर देगा, मेरी सुंदर लड़की दे देगी, शादी करा देगी, मेरे बच्चों का भला कर देगा, हर कहीं पैर पटकते रहो। तो बकरी के सामने, कुत्ते के सामने, बिल्ली के सामने, सांप के सामने, पेड़ के सामने, पत्थर के सामने, पहाड़ के सामने, हर जगह माथा फेरते रहे। और जैसे मैंने उदाहरण दिया दो हफ्ते पहले वो फैमिली की, अमेरिका में 15-25 साल रहने के बावजूद भी दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ा, कम से कम एक दूसरे माहौल से तीसरे दूसरे माहौल में आए, थोड़ा बहुत तो अंतर आना चाहिए ना, कुछ अंतर नहीं आया। वो जो खुद तो पढ़े लिखे हो गए पर जो रिलीजियस नॉलेज है वो तो पढ़ने लिखने से नहीं आया, वो वही अनपढ़ ट्रेडिशन से जो हेरिडिटरी आता गया वो अभी भी है, और कल्चर के नाम पर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी के समय भी यही समस्या थी, ज्यादा भयंकर समस्या थी, और तब उन्होंने समाज में धर्म को बदलने के लिए, समाज और धर्म को बदलने की कोशिश की। एग्जॉस्टेड द नेशन टू एक्सेप्ट सोशल रिफॉर्म्स लाइक एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए मजेदार बात है, आज भी मैं पुरानी, आज से 150-200 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो 2015 की बात कर रहा हूं, 16 की बात कर रहा हूं। आज भी भारत में लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, गाय बकरी पालते हैं, उसे मुंह चाटते हैं, पर कोई छोटे जात का आदमी आ जाए अपने आप को अपवित्र समझते हैं। इससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है। आप घर में आप गाय को तो माता बोलते हो और इंसानों को कुत्ते बिल्ली से बदतर व्यवहार करते हो। अनटचेबिलिटी से ज्यादा गंदी बात और कुछ हो नहीं सकती। आप एक इंसान को छूने से भी पाप समझते हो। महात्मा बुद्ध के समय की एक कहानी है, आपने सुना होगा, जातक कथा की कहानी है। शारिपुत्त शूद्र घर का लड़का है, अछूत घर का लड़का है। उन दिनों उसकी मां मर गई, उसको पता है कि मां, मरी हुई मां की आत्मा को तभी सदगति मिलेगी जब ब्राह्मण को कुछ देंगे। तो पंडित जी ब्राह्मण नहा धोकर के जा रहे थे, तो ब्राह्मण को छूना, उसके अंगन में आ जाना शूद्र आदमी का पाप समझा जाता था। तो उसने इंतजार किया वो तालाब के पास कि ब्राह्मण जी नहा धोकर के आए तो मैं यहीं उनको कुछ दान दक्षिणा दान दे दूं। गरीब घर का था ब्राह्मण, नहा धोकर के आए, सामने शारिपुत्र को देखा, दुनिया भर के गालियां दी, डांटा कि तुम मुझे अपवित्र कर दिया, फिर दोबारा नहाने गए। वो एक दो बार नहा करके वापस आए, देखा ये लड़का बार बार सामने आता है, खूब गुस्से में लाल पिला होकर चिल्लाने लगे। शारिपुत्र दूर से बोला, माफ करिए, बस मैं आपके शकल दिखाना नहीं चाहता हूं, मेरे पास ये सोने की सिक्का है, मैं बस ये रख देता हूं, चले जाता हूं, मेरी मां मर गई है, आप इसको ले लीजिए, मेरी मां को मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण मुस्कुरा कर बोले, रे बुद्धू पहले बता देता कि दान देने आए हो, मैं चार बार नहीं नहाता। ये पहले ही थी और आज भी है, पैसे के सामने सब छूत अछूत खराब ठीक हो जाता है। कितनी हिपोक्रेसी है, वो अनटचेबिलिटी के पीछे भी थी, उन सारे चीजों के पीछे। इसी तरह सती प्रथा, पुरुष मरने के बाद स्त्री की कोई औकात नहीं जिंदा रहने की, और डाउरी तो आज भी होता है जी, मुझे तो आश्चर्य होता है ये एनआरआई लोग को मोटे मोटे डाउरी लेते हैं भारत में जाकर के, जो भारत में शादी करते हैं। हो सकता है आप में से कोई ना हो, पर हजारों की संख्या में एनआरआई ये जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में रहते हैं, वो भी कम दूध के धुले हुए नहीं होते हैं। जो बड़े अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, बड़े अंग्रेजी फराटे से बोलते हैं, अपने आप को बिल्कुल वेस्टर्नाइज्ड कल्चर्ड सिविलाइज्ड बोलते हैं, डाउरी के मामले में कितने परिवारों को बर्बाद कर देते हैं जमीन जायदाद बेच के। मतलब हम पढ़े लिखे हो गए, अब वो ज्यादातर लोगों को तो धर्म कर्म में भी इंटरेस्ट नहीं है, पर उस धर्म के नाम पर सारी बुराई को बनाए रखने में बड़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि खुद को फायदा होता है। आज भी होता है जी, दूसरे चीजों को, दूसरों की चीजों को बहुत सुपीरियर समझना, अपनी चीजों को इंफीरियर समझना, ये जो भावना, जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है। स्वामी जी ने लोगों को यह जागृत कराने की कोशिश की कि अपनी भाषा को एक मानो। वो ब्रिटिश जमाने का ब्रिटिश इंडिया थी, तब भी उन्होंने वो गुजरात के थे, गुजराती बोलते थे। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो संस्कृत में प्रचार किया, पर लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोग हिंदी समझते, तो उन्होंने हिंदी में बोलना शुरू किया। इसलिए जो आप पुस्तक देखेंगे, स्वामी जी के लिखे हुए पुस्तक, हिंदी में उन्होंने लिखा, कुछ संस्कृत में, बाद में सब हिंदी में लिखा। वो हिंदी में थोड़ी बहुत तो गुजराती टच है, कभी कभी मीनिंग में इधर उधर होता है, पर अहिंदी भाषी होने पर भी, वैसे तो गुजरात के बड़े सारे महापुरुष हैं जिन्होंने हिंदी के लिए, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अनकंपेरेबल है। वो महात्मा गांधी से लेकर के ऐसे सैकड़ों महापुरुष आपको गुजरात से मिलेंगे जिनकी हिंदी भाषी लोगों से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है हिंदी भाषा के प्रति। He advocated the equal rights and respect to women and advocated the education of a girl child like the males. तो स्वामी जी पहली बार दुनिया को ये बताया, एक ब्राह्मण घर का व्यक्ति होकर के, खुद ब्राह्मण वैदिक विद्वान होकर के, पहला भारतवर्ष का पहला कोई ब्राह्मण विद्वान, वैदिक विद्वान, कर्मकांड विद्वान, जो अपने मुंह से बोलता है कि वेद शास्त्र पढ़ने में सबका अधिकार है। आज भी बड़े सारे कंजर्वेटिव ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं, शूद्र हो, स्त्री हो, सबको अधिकार है। आपको पता हो ना हो, भारत वर्ष में कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल खोला गया था, आर्य समाज की तरफ से स्वामी श्रद्धानंद जी ने खुलवाया था। ब्रिटिश के आने के बाद कोएड स्कूल तो शुरू हो गए थे। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ चेंज कर देने से लोगों को आप मजबूर नहीं कर सकते। आज भी गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, लॉ है, सब कुछ है, डाउरी के खिलाफ भी लॉ है। जब तक पब्लिक में मोटिवेशन ना हो, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस ना हो, तब तक देश में सुधार नहीं होता है। आप कहेंगे नहीं, भारत में पढ़ाई लिखाई लड़कियों की जागरण आया क्योंकि सरकार ने स्कूल खोली, पर जब तक लोगों के माइंडसेट चेंज नहीं होगा, वो अपने बच्चों को नहीं भोजेंगे। ये आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन था, स्वामी दयानंद जी के ये ललकार था कि स्त्री हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबको पढ़ने का अधिकार है, सब कुछ पढ़ने का अधिकार है। वेद शास्त्र या संस्कृत हो, कुछ भी हो, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है। शादी के लिए भी उन्होंने नियम बनाया, जो भी, और जो मैंने अभी आप कह रहे थे अरेंज मैरिज या लव मैरिज, मैंने उस दिन उस परिवार को पूछा, मैंने कहा आपको पता है हमारे यहां धर्मशास्त्रों में 8 तरह के शादियों का विधान है, उसमें एक शादी ये भी है कि मां बाप चूज करते हैं तो लड़के लड़कियां शादी करते हैं। 8 तरह की शादियां हैं, और एक शादी बड़े आपके पुराणों में चर्चित है, गांधर्व विवाह। ये गांधर्व विवाह क्या होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, मां बाप राजी नहीं है तो कोई नहीं, आप अपने अलग से शादी कर लो, माला डलवा दो, शादी हो गई। ये एक्सेप्टेड था, एक्सेप्ट, ये 8 शादियों में से एक था। हम इतने ज्यादा गए गुजरे नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। देवियों सज्जनों, स्वामी जी ने एक बड़ा, जिसको मॉडर्न हिंदू लोग बड़े कंट्रोवर्शियल समझते हैं, और आर्य समाज के बड़े सारे विद्वान डरते हैं उस बात को रखने के लिए, क्योंकि जब आप अनपढ़ हो, आपका दिमाग कुंद जाए, आप दुनिया को ठीक से समझो नहीं, तो आप यही ऐसे ही बिहेव करोगे। हमारे धर्मशास्त्रों में एक नियोग प्रथा है, आर्य समाज के बहुत सारे लोगों को भी उसमें बेचैनी होती है। तो क्या है कि स्त्री अगर पति पांच कंडीशन में, ये पांच कंडीशन है, अगर वो परदेश चला जाए 12-13 साल तक वापस ना आए, अगर पति में योग्यता ना हो स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए, संतान पैदा करने के लिए, या स्त्री को पति कोई ऐसी टर्मिनल डिजीज से ग्रस्त हो जिसको मरना निश्चित है, या जिसके शक्ति नहीं है, तो स्त्री चाहे दूसरे किसी और पुरुष के साथ संबंध बना के संतान पैदा कर सकता है। ये पुरुषों की नाक टेढ़े हो जाते हैं, आर्य समाज के लोगों के भी टेढ़े हो जाते हैं। कितनी गंदी बात, मैंने पूछा अगर ये तो बिना लिखे ही शास्त्र में तुम लोग तो कर डालते हो, कोई शास्त्र तो तुम लोगों के लिए नियम नहीं बनाया कि पत्नी मर जाए चार शादियां कर डालो, कितनी शादियां कर डालते हो। स्त्री के लिए लिख दिया तो हाथ पैर कांप जाता है, क्यों? पढ़े लिखे होने से क्या होगा, अभी दिल मानता नहीं है कि तुम मेरे बराबर की हो। मैंने कहा अगर हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा मॉडर्न थे, देवियों सज्जनों, अगर आप यही फिलॉसफी मानते हो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हिंदू लोग, तो महाभारत के 90% कैरेक्टर आपकी भाषा में तो नाजायज बच्चे हैं, क्योंकि सब नियोग से पैदा हुए हैं, पता है? तो आपको भी पता होना चाहिए, थोड़े ही क्रिश्चियन मुस्लिम को पता होगा। आपके पांडव, आपके धृतराष्ट्र, आपके पंडु, आपके हजारों कैरेक्टर, क्योंकि पुरुष और स्त्री को अधिकार बराबर में था। पढ़े लिखे होने पर भी जो पुरुष प्रधान मानसिकता में बदलाव नहीं आया, अब ये बात डाइजेस्ट नहीं होता है कि मेरी स्त्री को भी ये हक मिल जाए। स्वामी जी उस पर भी खड़े रहे, ये हो सकता इसमें उसको भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम by bringing together people from different strata the society under one umbrella, that is classroom. जो गुरुकुल सिस्टम खत्म हो चुका था, सिर्फ आप थोड़े बहुत बड़े जात के लोग को अपने अपने घर में प्राइवेट ट्यूटर रख करके पढ़ाई करते थे। ब्रिटिश आने के बाद धीरे धीरे मॉडर्न स्कूल शुरू होने लगे, वहां भी सिर्फ राजा महाराजे बड़े लोगों के बच्चे जाते थे। स्वामी जी ने जो एजुकेशनल सिस्टम में जो परसेप्शनल चेंज लाया, वो कोई जमीन में यूज हो तो बहुत बाद में हुआ, जो प्रैक्टिकलिटी में जो बात में आया, द परसेप्शनल जो चेंज लाया कि हर कोई एक ही गुरुकुल में एक ही पाठशाला में पढ़ सकता है। आप लोगों को पता है कि नहीं है, मैं एक चीज आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आज भी भारतवर्ष में, खास करके नॉर्थ इंडिया में, सैकड़ों गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल मतलब ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आर्य समाज के द्वारा चलाए जाते हैं, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं वो है कि आज भारत में कम ऐसे हजारों, हो सकता है 50,000 से भी ज्यादा हो, पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो शूद्र हैं, वो आदिवासी घर के हैं, वो छोटे जात के हैं। आज वो जनेऊ पहनते, चोटी रखते, दूसरों के घर में हवन करते, पूजा पाठ करते हैं। ये आर्य समाज का देन है। आज दलित आंदोलन भारत में चलता है, दलित मूवमेंट, कितने एंटी इंडियन हो चुके हैं, हिंदू के ऊपर जात के लोगों के अत्याचार के कारण उनको क्रिश्चियन मिशनरी से लेकर लेफ्टिस्ट लोग को उनको उसका फायदा उठाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। पर आप शायद अकेला आर्य समाज होगा, ये सो कॉल्ड हिंदू लीडर भी पता नहीं कहां सोते हैं, जिसने इस इतने सालों में लाखों ऐसे नए ब्राह्मण पैदा किए हैं जो छोटे जात में है, कोई अछूत माने जाते थे, और वो आज रेस्पेक्टेबल है, डिग्निटी के साथ जीते हैं। और केवल डिग्निटी के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ बदल चुका है, उनका नाम बदल चुका है। वो पंडितों की तरह रहते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों के घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में करते हैं। वो जब अपने गांव जाते हैं तो हक के साथ करते हैं। बहुत सारे गांव वाले उनको विरोध करते हैं, वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। देवियों सज्जनों, वो जो स्वामी जी ने जो विचार रखा था, उसका इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे होने लगा। इंस्पायर द नेशन टू एस्पायर स्वराज्य, दैट इज सेल्फ गवर्नेंस, नेशनलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज्य in 1876, later taken by Lokmanya Tilaka, he was the first to give the word Swadeshi. ये जो स्वदेशी और स्वराज्य का कंसेप्ट है, वो तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर आप जानते हैं। कि अगर आप स्वामी जी के भाष्य ग्रंथ पढ़ेंगे, उनके जो लेक्चर अगर आप पढ़ेंगे जो छपा हुआ आपको मिलेंगे, वो ऐसा कोई जगह नहीं होता था, कोई प्रवचन नहीं होता था जहां स्वराज्य और स्वदेशी, अपने देश का, अपने लोगों के द्वारा अपना शासन हो और अपनी चीजों को हम प्रयोग करें, वो इंडिजिनियसनेस के ऊपर उनका जो जोर था। बाद में वो पूरे नेशनल आजादी के मूवमेंट का मूवमेंट बोला, और महात्मा गांधी ने स्वदेशी को मूवमेंट बनाया, और बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज्य का आंदोलन दिया वो घर घर तक पहुंचा। पर वो विचार हमारा देशी विचार है, हमारे शास्त्र उसको, शास्त्र में उसके रेफरेंस है, हमारे शास्त्र उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये स्वामी जी ने पहली बार बताया। ऋग्वेद के पूरा का पूरा सूक्त दर्जनों मंत्रों से भरा पड़ा है, जिसमें आता है अर्चन स्वराज्यम, मैं उस स्वराज्य की अर्चना करता हूं, मैं उस सेल्फ गवर्नेंस की, इंडिपेंडेंसी की पूजा करता हूं। ये वेदों के मंत्र है। पर समस्या है कि हमारे हिंदू वैदिक पंडितों को ये सब चीजें नहीं दिखता, उनको तो ये दिखता है किस पेड़ को पूजने से कौन सा बच्चा पैदा होगा, कौन से पशु को पूजने से कौन सा लाभ होगा, उनको और कुछ नहीं दिखता था। स्वामी जी ने उन तथाकथित शास्त्रों को, जो सिर्फ पूजा पाठ का विषय बना हुआ था, उसको समाज के साथ जोड़ने की कोशिश की, आचरण के साथ जोड़ने की कोशिश की। देवियों सज्जनों, द फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम मूवमेंट को देखें, हजारों तरह के लोग उसमें जुड़े, पर शुरुआती दौर पर आप इतने सारे जो महान देशभक्त, जो देश के लिए कुर्बान होने वालों में आप काउंट करेंगे, आपको अनगिनत ऐसे वीर मिलेंगे, अनगिनत ऐसे फ्रीडम फाइटर मिलेंगे, जो स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर के आर्य समाजी हुए। आज भी आप देखेंगे किसी भी मंदिर में ये नहीं मिलेगा जो आर्य समाज में आपको मिलता है। आर्य समाज के दीवारों पर महावीरों के, स्वतंत्रता संग्रामियों के फोटो दिखते हैं, क्योंकि शायद अकेला ये एक धार्मिक संस्था है जहां पेट्रियटिज्म को, नेशनलिज्म को, भारतीयता को महत्व दिया जाता है। राष्ट्र की आजादी के आंदोलन में ये कुछ नाम है, ये नाम तो कुछ गिने जुने जो फेमस नाम है जिनको आप जानते हैं, ऐसे हजारों लाखों आपको फ्रीडम फाइटर मिलेंगे, जो इसीलिए वो जो देशभक्ति का पाठ आर्य समाज के सत्संग से मिलता था उनको, जो आर्य समाज के स्वामी जी के शास्त्र पढ़ के उनको मिलता था, वो सिर्फ धार्मिक नहीं बनते थे, वो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बनते थे, वो अपने देश के प्रति भी भक्तिवान बनते थे। उसमें लाला लाजपत राय से लेकर श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कैमा, गुरुदत्त विद्यार्थी, सुख यादव, सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, इनको तो आप जानते हैं जिन्होंने बलि चढ़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, रानाडे, श्रद्धानंद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वंस एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग, दयानंद थंडर्ड, योर एंसेस्टर्स वर नॉट अनसिविलाइज्ड मेन लिविंग इन फॉरेस्ट। हमें यही सिखाया गया, और आज भी भारत के स्कूलों में यही सिखाया जाता है हिस्ट्री के नाम पर। तुम लोग आक्रमक हो, बाहर से आए इन्वेडर्स हो, ये आर्य बहुत अनसिविलाइज्ड इन्वेडर्स थे, इन्होंने आक्रमण किया, सबको बर्बाद कर दिया, और ये जो तुम्हारा वेद शास्त्र वगैरह है वो तो ऐसा लगता है जैसे गडरियों का गाना है, वेस्टर्न लोगों ने इसको पढ़ा, इसके कमेंट्री लिखी और थोड़ी ऊपर ऊपर थोड़ा मीठा लिख करके अंदर सिर्फ सिर्फ नेगेटिव इंप्रेशन के अलावा कुछ नहीं डाला, और उसके कारण हिंदू समाज में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई और आज भी आता है, तो स्वामी जी तब सैकड़ों साल पहले वो अपने प्रवचन में ललकारते थे, योर एंसेस्टर्स वर नॉट अनसिविलाइज्ड मेन लिविंग इन फॉरेस्ट दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर स्कूल क्लासेस, दे आर ग्रेट मेन हु एनलाइटन दिस वर्ल्ड, वो बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, गिनते जाओ, जैमिनी हो, व्यास हो, आर्यभट्ट हो, वराहमीर हो, लाखों लाखों ऋषि मुनि है जो फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे। योर हिस्ट्री इज नॉट ए बंडल ऑफ डिफीट्स, जैसे कि हमें दिखाया गया कि मुगलों के समय जिस तरह राजपूत लोग हारते गए दिखाया गया, पर थोड़ा उससे पहले की भी तो हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री उसकी भी तो बताओ, अशोक की तो हिस्ट्री बताओ कभी डिटेल में, कभी चंद्रगुप्त की भी तो हिस्ट्री डिटेल में बताओ, वो हमारे हिस्टोरियन हमें नहीं बताते हैं। योर हिस्ट्री इज नॉट बंडल ऑफ डिफीट्स, इट इज द एओलॉजी ऑफ द कॉन्क्वरर्स ऑफ द वर्ल्ड। Your Vedic scriptures are not the songs of cowherds. They are immortal truth which shapes mighty souls like Sri Ram and Sri Krishna. आपके सारे महात्मा जिनको आज आप ईश्वर बनाकर पूछते फिरते रहते हो, उनके कैरेक्टर को कभी पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, उन्होंने भी अपने जिंदगी में गुरुकुल गए, कभी कभी मौका मिले तो वाल्मीकि का रामायण पढ़ लें, व्यास का महाभारत पढ़ लें, कृष्ण राम के सही चरित्रों को पढ़े, आपको समझ में आएगा वो भी किसी गुरुकुल में गए, कुछ शिक्षा प्राप्त की, किसी तरह जीवन में जो कठिनाई आपको होती है उनको भी होती रही, उन्होंने कैसे उन कठिनाइयों को पार किया, आगे बढ़े, संघर्ष किया और महान बने। उनकी महानता सिर्फ ईश्वरीय होने के कारण नहीं था, वो तो हमारे आपके तरह इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन को महान बनाया, अपने कर्मों से बनाया, अपने विचारों से बनाया, और वो जो कर्म विचार जहां से मिला वो उनके वो शास्त्र थे, जिनको पढ़ के आप बिगड़ते हो उनके पढ़ के वो सुधरे हुए थे। एक सज्जन मुझे बोले कि हम बच्चों को महाभारत पढ़ाना बंद कर दिया, उसमें बड़ी गंदी गंदी बातें बहुत हैं, जिन गंदी गंदी बातें पढ़ने से आपके बच्चे बिगड़ते हैं, हम तो उन्हीं को पढ़ के अच्छे बन गए। देवियों सज्जनों, आपके बच्चे बिगड़ते हैं, हम तो खुद अच्छे बने हुए हैं उन्हीं को पढ़ के। डिपेंड करता है मूवी देखने जाते हो क्या सीख कर आते हो, अब विलियन की कैरेक्टर सीखते हो या हीरो की कैरेक्टर सीखते हो, अब एक्शन सीख कर आते हो या रोमांस सीख कर आते हो या मोरलिटी लेकर आते हो, ये डायरेक्टर की दोष नहीं है, आप क्या सीखते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कैसा माइंडसेट लेकर जाते हो ये आप पर डिपेंड करता है। लाखों करोड़ों लोग सुधर गए महाभारत रामायण पढ़ के, और किसी का बच्चा बिगड़ता है तो भगवान उसको भला करे। तो स्वामी जी कहते हैं, अवाक राइज, बी प्राउड ऑफ योर ग्लोरियस हिस्ट्री, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू मोल्ड द प्रेजेंट, शेम अपन दैट एजुकेशन which fills you with contempt for your ancestors। और आज भी हम ये पढ़ाया जाता है हमारे पूर्वज कैसे छोटे थे, अनपढ़ थे, हमारे शास्त्र कैसे बकवास थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दयानंद मिशन वॉज नॉट टू स्टार्ट टू सेट अप एनी न्यू रिलीजन बट टू टेल द ह्यूमन काइंड फॉर यूनिवर्सल थॉट्स थ्रू नोबिलिटी as spelled out in Vedas। But that mission he founded Arya Samaj, enunciating the 10 universal principles as a code of universalism। आपके आर्य समाज के सब जगह लगा हुआ है आर्य समाज के 10 नियम। सज्जनों देवियों याद रखें, आर्य समाज कोई सेक्ट नहीं, सेक्ट वो होता है जो अपना कोई व्यू पॉइंट रखता है और उसको चलाने की कोशिश करता है। स्वामी जी कहते हैं मेरा अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं है, वेद से लेकर जैमिनी तक जो हमारे शास्त्र कहते हैं हम उन सबको मानते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं हम उनको मानते हैं, हम उस हर शास्त्र को मानते हैं, कोई नया विचार हमारा नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक कराना है, आपके अंदर अवेयरनेस लाना है, ये सब आपका है, आप समझो, आप जानो, आप क्या ये मिडिल एज में 500 साल 400 साल पहले लिखे गए ये महा कवियों के पोएटों के पोएमों को शास्त्र समझ के बैठ के रटते रहते हो और उससे उठपटांग काम करते रहते हो। अपने शास्त्रों को पहचानो, अपने पूर्वजों की उस धाती को समझो, उस पर तुम्हें भी गर्व होगा, तुम अच्छा इंसान भी बनोगे, दुनिया भी तुम्हें डिग्निटी के साथ रेस्पेक्ट के साथ देखने लगेगा। हमारा कोई अपना विचार नहीं है, कोई हमें कोई आंदोलन खड़ा करने कहा कि आप अमुक को पूजने से यहां पहुंचोगे, अमुक को पूजने से वहां पहुंचोगे, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। और स्वामी जी का बलिदान भी, केवल स्वामी जी नहीं, आर्य समाज में जितने भी लीडर आए सभी लीडरों को मारा गया। वो मर स्वामी जी को 18 बार जहर पिलाने की कोशिश की गई, कितने बार उनको मारने की गुंडे भेजे गए, सांड छोड़े गए, पागल हाथी छोड़े गए वगैरह वगैरह मारने की कोशिश की गई। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं की, उनको लालच दिया गया। एक लालच कितने बार दिया, अब इतने ज्ञानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, अब क्यों ये मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते हो? उनको मठ का महंत बनाने की कोशिश की। आपको पता है भारत के जो मठ होते हैं वो किसी किसी राज्य के जो बजट से भी बड़े बड़े मठ मंदिर होते हैं। तो आप मठ के महंत बन जाइए, ये संभालिए, आप ज्ञानी हो, आप प्रचार करिए धर्म प्रचार, पर ये दो चार चीजें बोलना छोड़ दीजिए। वो एक्सेप्ट नहीं था। स्वामी जी ने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं बनाया। सज्जनों, देवियों, और आर्य समाज, क्योंकि हिंदुस्तानी माइंडसेट ऐसा ही है, पता नहीं गुरु बन के फिर पूजने लगना लग जाए, दयानंद जी को भी पूजने ना लग जाए, तो उन्होंने आर्य समाज में जो बनाया उसके लिए जो उन्होंने बाइला बनाया, संविधान बनाया, उसमें था कि इलेक्शन होगा। सज्जनों, देवियों, 19वीं शताब्दी में कोई धार्मिक संस्था अपनी संस्था में डेमोक्रेसी लाई है, लाई, तब भारत खुद डेमोक्रेट नहीं था, पर आर्य समाज में, और उसका खराब परिणाम भी मिला, क्योंकि जब आप लोकतंत्र लाते हैं तो गलत लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, पर शायद पहले अकेले आर्य समाज ऐसी एक सामाजिक धार्मिक या जिस तरह के भी संस्था कहिए जो आज तक 150 साल से लोकतंत्र से चलता है। वहां कोई गुरु नहीं होता है, कोई आचार्य नहीं होता जो रूल करता है, लोकतंत्र होते हैं, लोग वहां इलेक्ट करके आते हैं, जो मैनेजिंग संभालते हैं आर्य समाज को। क्यों? स्वामी जी को डर था हो सकता है लोकतंत्र के कारण गलत लोग आए, समाज चले न चले, पर जो एक चीज नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई गुरु बना के, बाबा बना के, भगवान बना के पूजने ना लग जाए। इसीलिए कहा, जब मैं मरूं मुझे जो जल जाए, वो इवन वो जले हुए जगह के भी वो जो राख उसको उठा के ले करके जहां भी सब पानी वगैरह हो वहां डाल देना या खेतों में डाल देना, क्योंकि ये हिंदू लोगों की बीमारी है, फिर जहां जला वहां भी आकर मंदिर बना देंगे, वो स्वामी दयानंद की पूजा करने लग जाएंगे। इसलिए उनके राखों को लेकर के खेतों में डाल दिया गया कि किसी को मिले ही नहीं कि वो कहां मरे थे, कहां पैदा हुए थे, कि कहीं गलती से ये आर्य समाज में भी कोई पैदा होकर उनको पूजने ना लग जाए। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि लोग सत्य को समझें, सच्चे ईश्वर को माने, ईश्वर के नाम पर ये गली गली कुचे कुचे में घूम करके नहीं, सच्चे ईश्वर को माने, सच्चे धर्म को माने, जीवन चरित्र को सुधारें, अपने देश को सम्मान करें, ईश्वर को सम्मान करें, जिंदा मां बाप गुरुजनों की सेवा करें, यही है श्राद्ध, यही है पूजा। जैसे शुरू में मैंने कहा, अगर नमस्कार करना है तो जिंदा आदमियों की करो, अपने मां बाप के करो, गुरुजनों का करो, बड़ों का करो, किसी मरे हुए आदमी के फोटो पिक्चर मूर्ति के सामने करना यूजलेस है, कुछ फायदा नहीं। आपकी इमोशन को कितना सेटिस्फेक्शन देता है, दैट्स अप टू यू, बट दिस इज यूजलेस, दैट्स जस्ट नॉनसेंस। फेथ के नाम पर तो लोग क्या क्या करते हैं, हमारे शास्त्र कवि इस तरह स्टुपिडियस फेथ को फेवर नहीं करते थे जैसा आप मानते हो या हमारे लोग जानते हैं। स्वामी जी इसी बात को प्रमोट करना चाहते हैं। समय हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी के साथ स्वामी जी को हम आज के शुभ दिन पर स्मरण करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वामी जी के जीवन पढ़ें, अगर जीवन ही नहीं पढ़ सकते उनके लिटरेचर जरूर पढ़ें, और उनका सबसे फेवरेट लिटरेचर है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है लाइट ऑफ ट्रूथ, जरूर पढ़ें। अगर आपके दिमाग खुला हो, कंजर्वेटिव, अगर प्रिजुडिशियस के साथ भरा हुआ ना हो, तो आपको बहुत कुछ जीवन में बदलने को मौका मिलेगा। इसी के साथ दोबारा स्वामी जी के इस जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं हम सबके जीवन में सच्चे धर्म के प्रति, सच्चे ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, नकली ईश्वर से बचे, नकली धर्म से बचने की कोशिश करें। ओम शांति शांति शांति।